इसराइल एक आतंकवादी राज्य है। परिचय। इसराइल राज्य, जो इर्गुन, लेही और हदना जैसी सियोनवादी मिलिशियाओं की हिंसक मुहिमों के माध्यम से जन्मा, एक रक्तपात की विरासत को वहन करता है जो आधुनिक आतंकवादी संगठनों की रणनीतियों को दर्शाता है, जब इसे आज गैर राज्य अभिनेताओं पर लागू मानकों के आधार पर आंका जाता है। प्रारंभिक हत्याओं और नरसंहारों से लेकर समकालीन हवाई हमलों तक, जो राजनयिक सुविधाओं और राजनीतिक हस्तियों की लक्षित हत्याओं पर केंद्रित हैं, इसराइल की कार्रवाइयां हिंसा का एक सुसंगत पैटर्न प्रदर्शित करती हैं, जो डराने, दबाव डालने और विस्थापन के लिए डिजाइन की गई हैं, ताकि राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। यदि ये कार्रवाइयां जो एक सदी तक फैली हैं किसी गैर राज्य अभिनेता द्वारा की गई होती, तो इन्हें निस्संदेह आतंकवाद के रूप में वर्गीकृत किया जाता। फिर भी इस क्रूर इतिहास में निहित इसराइल पाखंडपूर्ण ढंग से फलस्तीनी महिलाओं, बच्चों, मानवीय सहायता कर्मियों और पत्रकारों को बिना सबूत के आतंकवादी कहता है, ताकि अपनी आक्रामकता को उचित ठहराया जा सके। यह निबंध आतंकवाद को परिभाषित करता है, इसराइल के हिंसक कृत्यों को पीड़ितों के विवरण और आतंकवाद वर्गीकरण के साथ सूचीबद्ध करता है और इसके आतंकवादी लेबलिंग की पाखंड को उजागर करता है। यह तर्क देते हुए कि इसराइल की कार्रवाइयां, इसके गठन से लेकर 2024 में राजनयिक लक्ष्यों पर हमलों तक, इसे एक आतंकवादी राज्य के रूप में चिन्हित करती हैं। अध्याय 1, आतंकवाद की परिभाषा। आतंकवाद, जैसा कि ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस GTD द्वारा परिभाषित किया गया है, किसी गैर राज्य अभिनेता द्वारा अवैध बल और हिंसा का धमकी या वास्तविक उपयोग, जो डर, दबाव या धमकी के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक या सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है, आमतौर पर नागरिकों या गैर लड़ाकों को निशाना बनाते हुए। प्रमुख तत्वों में इरादा, डर के माध्यम से दबाव, लक्ष्य, नागरिक, बुनियादी ढांचा या प्रतीकात्मक व्यक्ति और अभिनेता, गैर राज्य इकाइयां शामिल हैं। यद्यपि राज्य की कार्रवाइयों को आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, जैसे जिनेवा कन्वेंशन के तहत आंका जाता है, इस आतंकवाद ढांचे को राज्य की कार्रवाइयों पर काल्पनिक रूप से लागू करने से पता चलता है कि क्या वे आतंकवादी रणनीतियों के साथ संरेखित हैं। संकेतकों में नागरिकों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, बल का असमान उपयोग या आबादी को डराने या विस्थापित करने की कार्रवाइयां शामिल हैं। इसराइल और इसके सियोनवादी पूर्ववर्तियों के लिए यह दृष्टिकोण एक हिंसक रणनीति को उजागर करता है, जो राज्य की स्थापना, क्षेत्रीय नियंत्रण या क्षेत्रीय प्रभुत्व को सुनिश्चित करने के लिए है, जो अलकायदा या आईएसआईएस जैसे समूहों द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियों के समान है। यह परिभाषा इसराइल की कार्रवाइयों के विश्लेषण को आतंकवाद के रूप में ढालती है, उन्हें गैर राज्य अभिनेताओं के समान मानकों पर आंकते हुए। अध्याय 2, इसराइल और इसके पूर्ववर्तियों के आतंकवादी कृत्यों की कालानुक्रमिक सूची। नीचे सियोनवादी समूहों, इर्गुन, लेही, हगना और इसराइल राज्य की कार्रवाइयों की एक व्यापक कालानुक्रमिक सूची दी गई है, जिसमें 2024 में दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला और तेहरान में इस्माइल हनिया की हत्या शामिल है, जिसमें पीड़ितों का विवरण और आधुनिक मानकों के अनुसार उनके आतंकवाद के रूप में वर्गीकरण के लिए स्पष्टीकरण दिए गए हैं। प्रत्येक कृत्य का मूल्यांकन इस तरह किया जाता है जैसे कि इसे किसी गैर राज्य अभिनेता ने किया हो, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट और विश्वसनीय मीडिया स्रोतों पर आधारित। जून 1924, जैकब इसराइल डी हैन की हत्या, यरूशलेम, विवरण, हगनानी, यित्सहाक बेन स्वी के आदेश पर, डच यहूदी विरोधी, सियोनवादी जैकब इसराइल डी हैन को यरूशलेम में उनकी राजनीतिक गतिविधियों और अरब संपर्कों के कारण हत्या कर दी, ताकि असहमति को चुप कराया जा सके। पीड़ित, वन मारा गया। स्रोत, इंस्टीट्यूट फॉर पैलेस्टाइन स्टडीज। आतंकवाद वर्गीकरण, किसी नागरिक की उसकी राजनीतिक मान्यताओं के लिए हत्या करना, असहमतियों को डराने के लिए आतंकवाद है, जो रेड ब्रिगेड्स की लक्षित हत्याओं के समान है। वैचारिक निशाना आधुनिक परिभाषाओं के अनुरूप है। नवंबर 1944, लॉर्ड मॉयनी की हत्या, काहिरा, विवरण, लेही ने मध्य पूर्व के लिए ब्रिटिश राज्य मंत्री लॉर्ड मॉयनी और उनके ड्राइवर की काहिरा में हत्या कर दी, क्योंकि उन्हें यहूदी आप्रवासन और राज्य निर्माण में बाधा माना जाता था। पीड़ित, टू मारे गए। स्रोत, लॉर्ड मॉयनी की हत्या। आतंकवाद वर्गीकरण, विदेश में एक नागरिक अधिकारी की हत्या करना, औपनिवेशिक शक्ति को दबाव डालने के लिए आतंकवाद है, जो ब्लैक सितंबर के राजनयिक हत्याओं के समान है। अगस्त 1944, सर हेरोल्ड मैकमाइकल की हत्या का प्रयास, विवरण, लेही ने पैलेस्टाइन में ब्रिटिश उच्चायुक्त सर हेरोल्ड मैकमाइकल की हत्या करने की कोशिश की, ताकि औपनिवेशिक शासन को बाधित किया जा सके। हमला विफल रहा। पीड़ित, कोई नहीं। स्रोत, सियोनवादी राजनीतिक हिंसा। आतंकवाद वर्गीकरण, किसी सरकार को डराने के लिए एक अधिकारी की हत्या का प्रयास करना आतंकवाद है, जो आईएल की असफल योजनाओं के समान है, भले ही कोई पीड़ित न हो। फरवरी 1946, ब्रिटिश हवाई अड्डों पर हमला, विवरण, इर्गुन और लेही ने 3 ब्रिटिश हवाई अड्डों, लिडा, कास्तना, कफर सिरकिन पर 15 विमानों को नष्ट किया और एक को क्षतिग्रस्त किया, ताकि सैन्य नियंत्रण को कमजोर किया जा सके। पीड़ित, बन मारा गया, हमलावर। स्रोत: ब्रिटिश मंडेट के तहत यहूदी आतंकवाद। आतंकवाद वर्गीकरण: ब्रिटिश वापसी को मजबूर करने के लिए सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाना आतंकवाद के अनुरूप है, जो आईए के सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमलों के समान है। जून 1946, नौ पुलों का विनाश। विवरण: हगना, इर्गुन और लेही ने पेलेस्टाइन को पड़ोसी देशों से जोड़ने वाले 11 में से 9 पुलों को नष्ट कर दिया, जिससे ब्रिटिश रसद बाधित हुई। पीड़ित: कोई प्रत्यक्ष पीड़ित नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवधान। स्रोत: पामाज अभिलेखागार। आतंकवाद वर्गीकरण: शासन को पंगु बनाने और डराने के लिए बुनियादी ढांचे का विनाश आतंकवाद है, जो 2004 में मैड्रिड ट्रेन बम विस्फोटों के समान है। जुलाई 1946, किंग डेविड होटल पर बम विस्फोट, यरूशलेम। विवरण: इर्गुन ने ब्रिटिश प्रशासनिक मुख्यालय पर बमबारी की, जिसमें 91 लोग मारे गए, 41 अरब, 28 ब्रिटिश, 17 यहूदी और 45 घायल हुए। चेतावनियां विवादास्पद थीं। पीड़ित: 91 मारे गए, 45 घायल। स्रोत: किंग डेविड होटल बम विस्फोट। आतंकवाद वर्गीकरण: एक मिश्रित नागरिक प्रशासनिक इमारत पर बमबारी आतंकवाद है, जो 1995 में ओक्लाहोमा सिटी बम विस्फोट के समान है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे आतंकवाद के रूप में निंदा की। अक्टूबर 1946, ब्रिटिश दूतावास पर बम विस्फोट, रोम। विवरण: इर्गुन ने रोम में ब्रिटिश दूतावास में 40 किग्रा TNT विस्फोट किया, जिसमें 2 लोग घायल हुए और इमारत को नुकसान पहुंचा। पीड़ित: 2 घायल। स्रोत: सियोनवादी राजनीतिक हिंसा। आतंकवाद वर्गीकरण: डराने के लिए विदेश में एक राजनयिक लक्ष्य पर बमबारी आतंकवाद है, जो 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर बम विस्फोट के समान है। 1946-1947, अरब बाजारों पर बम विस्फोट, हैफा, यरूशलेम। विवरण: इर्गुन ने अरब बाजारों पर बमबारी की, जिसमें दर्जनों फलस्तीनी नागरिक मारे गए और सामुदायिक तनाव बढ़ गया। पीड़ित: दर्जनों मारे गए, सटीक संख्या भिन्न। स्रोत: इंस्टीट्यूट फॉर पेलेस्टाइन स्टडीज। आतंकवाद वर्गीकरण: डर पैदा करने के लिए नागरिक बाजारों को निशाना बनाना आतंकवाद है, जो अलकायदा के बाजार बम विस्फोटों के समान है। जुलाई 1947, ब्रिटिश सार्जेंटों का अपहरण और फांसी। विवरण: इर्गुन ने ब्रिटिश सार्जेंटों क्लिफर्ड मार्टिन और मार्विन पाइस का अपहरण किया और उनकी फांसी दी। उनके शवों में विस्फोटक लगाए, जो कि निष्पादित सदस्यों के लिए प्रतिशोध था। पीड़ित: 2 मारे गए, 1 घायल। स्रोत: सार्जेंट्स मामला। आतंकवाद वर्गीकरण: गैर लड़ाकों का अपहरण, निष्पादन और विस्फोटक लगाना आतंकवाद है, जो आइसिस की बंधक हत्याओं के समान है। अगस्त 1947, वियना में होटल साखर में सूटकेस बम। विवरण: इर्गुन ने वियना में ब्रिटिश मुख्यालय में सूटकेस बम विस्फोट किए, प्रचार उद्देश्यों के लिए मामूली नुकसान पहुंचाया। पीड़ित: कोई नहीं। स्रोत: सियोनवादी राजनीतिक हिंसा। आतंकवाद वर्गीकरण: डराने के लिए विदेश में सरकारी सुविधा पर बमबारी आतंकवाद है, जो रेड ब्रिगेड्स के प्रतीकात्मक हमलों के समान है। अप्रैल 1948, देयर यासीन नरसंहार। विवरण: इर्गुन और लेही ने देयर यासीन में 100 से अधिक फलस्तीनी ग्रामीणों, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, का नरसंहार किया, जिसने नकबा को शुरू किया। पीड़ित: 100-120 मारे गए। स्रोत: देयर यासीन नरसंहार। आतंकवाद वर्गीकरण: डराने और विस्थापित करने के लिए नागरिकों का नरसंहार आतंकवाद है, जो बोस्निया में जातीय सफाई के समान है। इलान पपे इसे जातीय सफाई कहते हैं। सितंबर 1948, फोल्के बर्नाडॉट की हत्या। यरूशलेम। विवरण: लेही ने संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ फोल्के बर्नाडॉट की हत्या कर दी, जो उनके विभाजन योजना का विरोधी था। पीड़ित: वन मारा गया। स्रोत: फोल्के बर्नाडॉट की हत्या। आतंकवाद वर्गीकरण: शांति को बाधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की तटस्थ हस्ती की हत्या आतंकवाद है, जो संयुक्त राष्ट्र कर्मियों पर हमलों के समान है। अक्टूबर 1953, किबिया नरसंहार। विवरण: एरियल शेरोन के नेतृत्व में इजरायली इकाई 101 ने किबिया में 69 फलस्तीनियों, ज्यादातर नागरिकों, को मार डाला और घरों को नष्ट कर दिया। पीड़ित: 69 मारे गए। स्रोत: किबिया नरसंहार। आतंकवाद वर्गीकरण: यदि गैर राज्य अभिनेता द्वारा किया गया, तो दंड देने और डराने के लिए नागरिकों का नरसंहार आतंकवाद होता, जो बोको हरम के गांवों पर हमलों के समान है। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी असमानता की निंदा की। अक्टूबर 1956, कफर कासिम नरसंहार। विवरण: इसराइली सीमा पुलिस ने 49 फलस्तीनी नागरिकों, जिनमें 23 बच्चे शामिल थे, को एक अघोषित कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए मार डाला। पीड़ित: 49 मारे गए। स्रोत: कफर कासिम नरसंहार। आतंकवाद वर्गीकरण: यदि गैर राज्य अभिनेता द्वारा किया गया, तो अनुपालन न करने के लिए नागरिकों का नरसंहार आतंकवाद होता, जो अर्धसैनिक सफाई के समान है। दिसंबर 1968 बेरूत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर छापा। विवरण: इसराइल ने पीएलओ के हमले के जवाब में बेरूत हवाई अड्डे पर 13 नागरिक विमानों को नष्ट कर दिया। पीड़ित कोई नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण व्यवधान। स्रोत: 1968 इसराइली छापा। आतंकवाद वर्गीकरण: यदि गैर राज्य अभिनेता द्वारा किया गया तो नागरिक बुनियादी ढांचे का विनाश आतंकवाद होता, जो 1985 में रोम हवाई अड्डे पर हमले के समान है। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी निंदा की। फरवरी 1973 लिबियन अरब एयरलाइंस फ्लाइट 114। विवरण: इसराइली जेट ने एक नागरिक विमान को मार गिराया जिसमें 108 लोग मारे गए। दावा किया कि यह गलती थी। पीड़ित: 108 मारे गए, 5 बचे। स्रोत: लिबियन अरब एयरलाइंस फ्लाइट 114। आतंकवाद वर्गीकरण: यदि गैर राज्य अभिनेता द्वारा किया गया तो नागरिक विमान को मार गिराना आतंकवाद होता, जो मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 17 के समान है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे युद्ध अपराध कहा। 1972-1988 ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड। विवरण: मोसाद ने पीएलओ नेताओं की हत्या की जिसमें नागरिक हताहत हुए, उदाहरण के लिए अहमद बौचिकी। पीड़ित: 20 प्लस मारे गए जिसमें नागरिक शामिल। स्रोत: ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड। आतंकवाद वर्गीकरण: यदि गैर राज्य अभिनेता द्वारा किया गया तो विदेश में गैर न्यायिक हत्याएं और संपार्श्विक क्षति आतंकवाद होती, जो ब्लैक सितंबर की कार्रवाइयों के समान है। सितंबर 1982 साबरा और शतीला नरसंहार। विवरण: इसराइल ने बेरूत में फालंगिस्ट मिलिशिया द्वारा 462-3500 फलस्तीनी और लेबनानी नागरिकों के नरसंहार को सुगम बनाया। पीड़ित: 462-3500 मारे गए। स्रोत: साबरा और शतीला नरसंहार। आतंकवाद वर्गीकरण: यदि गैर राज्य अभिनेता द्वारा किया गया तो नागरिक नरसंहार को सुगम बनाना आतंकवाद होता, जो नरसंहार में सहायता के समान है। खहन आयोग ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। अक्टूबर 2001 यासर अराफात अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विनाश। विवरण: इसराइल ने गाजा हवाई अड्डे पर बमबारी की, इसे निष्क्रिय कर दिया सैन्य उपयोग का दावा करते हुए। पीड़ित कोई प्रत्यक्ष नहीं, महत्वपूर्ण व्यवधान। स्रोत: यासर अराफात अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आतंकवाद वर्गीकरण: यदि गैर राज्य अभिनेता द्वारा किया गया तो नागरिक बुनियादी ढांचे का विनाश आतंकवाद होता, जो राज्य की स्थिति को कमजोर करता। 2008-2024 गाजा में सैन्य अभियान, कास्ट लीड, प्रोटेक्टिव एज आदि। विवरण: अभियानों ने हजारों को मार डाला, उदाहरण के लिए कास्ट लीड में 1166-1417 नागरिक, प्रोटेक्टिव एज में 2125-2310 नागरिक। पीड़ित: हजारों मारे गए, ज्यादातर नागरिक। स्रोत: सेलीम गोल्डस्टोन रिपोर्ट। आतंकवाद वर्गीकरण: यदि गैर राज्य अभिनेता द्वारा किया गया तो बड़े पैमाने पर नागरिक हताहतों के साथ शहरी क्षेत्रों पर बमबारी आतंकवाद होती, जो अलकायदा के शहर हमलों के समान है। 2010-2022 ईरान में गुप्त अभियान। विवरण: मोसाद ने परमाणु वैज्ञानिकों, उदाहरण के लिए मोहसिन फखरीजादेह की हत्या की और साइबर हमले किए, उदाहरण के लिए स्टक्सनेट। पीड़ित: 5-7 वैज्ञानिक मारे गए। स्रोत: मोहसिन फखरीजादेह की हत्या। आतंकवाद वर्गीकरण: यदि गैर राज्य अभिनेता द्वारा किया गया तो लक्षित हत्याएं और विदेश में साइबर हमले आतंकवाद होते, जो हिजबुल्लाह की हत्याओं के समान हैं। 1 अप्रैल 2024 दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला। विवरण: एक इसराइली हवाई हमले ने दमिश्क में ईरानी दूतावास के बगल में एक इमारत को निशाना बनाया, जिसे कांसुलर अनुबंध के रूप में वर्णित किया गया, जिसमें 7 आईजीसी सदस्य मारे गए, जिसमें वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी और ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हाड़ी हाजरहीनी और 5 अन्य अधिकारी शामिल थे। हमले ने इमारत को नष्ट कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राजनयिक उन्मुक्ति का उल्लंघन किया। ईरान ने इसराइल पर आरोप लगाया जिसने कोई टिप्पणी नहीं की और बदला लेने की कसम खाई। पीड़ित: 7 मारे गए। स्रोत: वॉशिंगटन पोस्ट, NPR। आतंकवाद वर्गीकरण: यदि गैर राज्य अभिनेता द्वारा किया गया तो राजनयिक सुविधा पर बमबारी और अधिकारियों की हत्या आतंकवाद होती, जो 1998 में अमेरिकी दूतावासों पर बम विस्फोटों के समान है। संप्रभुता और संरक्षित नागरिक स्थिति का उल्लंघन इसकी आतंकवादी प्रकृति की पुष्टि करता है। 31 जुलाई 2024 इस्माइल हनिया की हत्या, तेहरान। विवरण: हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हनिया और उनके अंगरक्षक को तेहरान में सैन्य रूप से संचालित गेस्ट हाउस में एक राजनयिक यात्रा के दौरान ईरानी राष्ट्रपति के उद्घाटन के लिए राजनयिक पासपोर्ट के साथ मार दिया गया। रिपोर्टों से पता चलता है कि एक रिमोट ट्रिगर बम या मिसाइल हमला, जो इसराइली मोसाद से जुड़ा है। ईरान और हमास ने इसराइल को दोषी ठहराया, जिसने पुष्टि नहीं की। हमले ने ईरानी सुरक्षा तंत्र को अपमानित किया, जिसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारियां और प्रतिशोध की प्रतिज्ञाएं हुईं। पीड़ित 2 मारे गए। स्रोत: न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, जेरूसलम पोस्ट। आतंकवाद वर्गीकरण: यदि गैर राज्य अभिनेता द्वारा किया गया तो विदेशी राजधानी में राजनयिक यात्रा के दौरान एक राजनीतिक नेता की हत्या आतंकवाद होती, जो म्यूनिक में ब्लैक सितंबर की हत्याओं के समान है। राजनयिक संरक्षण का उल्लंघन और शांति वार्ता को बाधित करने का इरादा इसके आतंकवादी दर्जे की पुष्टि करता है। मई 2025, सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला। विवरण: इसराइल ने सना हवाई अड्डे को निष्क्रिय कर दिया, 3 नागरिक विमानों को क्षतिग्रस्त किया और 3+ लोगों को मार डाला, जो हौथी हमले के जवाब में था। पीड़ित 3+ मारे गए। स्रोत: BBC। आतंकवाद वर्गीकरण: यदि गैर राज्य अभिनेता द्वारा किया गया तो मृत्यु के साथ नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला आतंकवाद होता, जो 11 सितंबर की व्यवधानों के समान है। यह सूची -1924 की हत्याओं से लेकर 2024 के राजनयिक हमलों तक इसराइल की हिंसा पर निर्भरता को प्रदर्शित करती है, जो गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा की गई तो आतंकवाद के अनुरूप होती। नागरिक हताहतों की संख्या, उदाहरण के लिए देयर यासीन, गाजा और राजनयिक स्थलों, उदाहरण के लिए दमिश्क, तेहरान को निशाना बनाना इसकी आतंकवादी विरासत को मजबूत करता है। अध्याय 3: इसराइल के आतंकवादी लेबलिंग की पाखंड। इसराइल का एक सदी का हिंसा का रिकॉर्ड देयर यासीन में नागरिकों की हत्या, दमिश्क में दूतावासों पर बमबारी और हनिये जैसे राजनयिकों की हत्या इसके लापरवाह लेबलिंग के साथ तेजी से विपरीत है, जिसमें फलस्तीनी महिलाओं, बच्चों, मानवीय सहायता कर्मियों और पत्रकारों को बिना सबूत के आतंकवादी कहा जाता है। गाजा में 2008-2024 इसराइल ने पूरे समुदायों को आतंकवादी गढ़ के रूप में चिन्हित किया, स्कूलों, अस्पतालों और संयुक्त राष्ट्र के आश्रयों पर बमबारी की, जिसमें हजारों लोग मारे गए, उदाहरण के लिए कास्टलीट में 926 नागरिक, प्रोटेक्टिव एज में 1617, सेलिम के अनुसार। 2024 में वर्ल्ड सेंट्रल किचन पर हमला, 7 सहायता कर्मी मारे गए और 2022 में अल जजीरा की पत्रकार शिरीन अबू अक्लेह की हत्या, जिसे बिना सबूत के आतंकवादियों से जुड़ा करार दिया गया, इस पैटर्न को दर्शाता है। 2024 में दमिश्क दूतावास पर हमला और हनियह की हत्या, जो संरक्षित राजनयिक हस्तियों को निशाना बनाते हैं, इसराइल के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के प्रति अवहेलना को और उजागर करते हैं, जबकि यह दूसरों पर आतंकवाद का आरोप लगाता है। यह पाखंड इसराइल के अपने आतंकवादी मूल को स्वीकार करने से इनकार में निहित है। मेनकेम बेगिन, इरगुन, किंग डेविड बम विस्फोट और यत्जहाक शमीर, लेही, बर्नाडॉट हत्या जैसे नेता प्रधानमंत्री बने, उनके अपराधों को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में पुनः नामित किया गया। इस बीच फलस्तीनी प्रतिरोध, यहां तक कि अहिंसक, को आतंकवाद कहा जाता है, जिससे पीड़ितों को अमानवीय बनाकर अत्याचारों को उचित ठहराया जाता है। 2021 में इसराइल द्वारा 6 फलस्तीनी गैर सरकारी संगठनों को आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत करना सबूतों के अभाव में था, जिसने संयुक्त राष्ट्र की निंदा को आकर्षित किया। आतंकवादी लेबल को प्रोजेक्ट करके इसराइल अपने स्वयं के कार्यों, नरसंहार, दूतावास बमबारी और हत्याओं से जांच को हटाता है, एक हिंसा के चक्र को बनाए रखता है, जिसमें नागरिक मृत्यु को संपार्श्विक क्षति के रूप में खारिज किया जाता है। यह दोहरा मानदंड, जो आतंकवाद पर निर्मित एक राज्य की रक्षा करता है जबकि दूसरों को अपराधी बनाता है, इसराइल की आतंकवादी राज्य के रूप में पहचान को रेखांकित करता है। निष्कर्ष: इसराइल का इतिहास 1920 के दशक में सियोनवादी मिलिशियाओं की हत्याओं से लेकर 2024 में दमिश्क और तेहरान में राजनयिक लक्ष्यों पर इसके हमलों तक हिंसा का एक अथक अभियान है, जो गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा किया गया तो आतंकवाद के रूप में लेबल किया जाता। देयर यासीन में नागरिकों के नरसंहार से लेकर ईरानी दूतावास की बमबारी और इस्माइल हनियेह की राजनयिक यात्रा के दौरान हत्या तक, ये कृत्य नागरिकों, बुनियादी ढांचे और संरक्षित हस्तियों को निशाना बनाते हुए कुख्यात आतंकवादी समूहों की रणनीतियों को दर्शाते हैं। फिर भी इसराइल बेशर्मी से फलस्तीनी नागरिकों, सहायता कर्मियों और पत्रकारों को बिना सबूत के आतंकवादी कहता है, एक घिनौनी पाखंड को उजागर करता है, जो इसके अपरिचित आतंकवादी मूल में निहित है। यह दोहरा मानदंड, एक सदी की प्रलेखित अत्याचारों के साथ इसराइल को एक आतंकवादी राज्य के रूप में चिन्हित करता है, जो अपनी हिंसा को आत्मरक्षा के आवरण में छिपाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसराइल को जवाबदेह ठहराना चाहिए, इसके कार्यों पर वही मानक लागू करके, जो किसी भी आतंकवादी संगठन पर लागू होते हैं, ताकि हिंसा और पाखंड का यह चक्र समाप्त हो।